ओम शांति। स्वागत है आप सभी का बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में। बाप दादा समय प्रति समय बच्चों को सेवा की नई नई विधियाँ, नए नए आइडियाज़, नए नए डायरेक्शंस अपनी मुरलियों के द्वारा, मिलन के द्वारा देते रहते हैं। उन्हीं में से एक बाबा का डायरेक्शन रहा कि बच्चे मेरे सामने गुलदस्ता प्रस्तुत करो। गुलदस्ता उन आत्माओं का जो बाबा के ज्ञान को समझ करके अनेकों तक वो ज्ञान पहुंचा सके, जो ये स्वीकार कर सके कि परमात्मा इस भूमि पर आया है और उनको देख करके बहुत आत्माओं की सेवा हो सके। ऐसी ही आत्माओं की सेवा करने के निमित्त आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब, जो कि इस संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल तो हैं ही, साथ साथ पॉलिटिशियन सर्विस विंग के चेयरपर्सन भी हैं। ऐसे ही एक आज हम इंसिडेंट को याद करेंगे और कैसे बाप दादा ने उसमें हमें मदद दी उसके बारे में जानेंगे आदरणीय भाई साहब से। ओम शांति भाई साहब।
ओम शांति
भाई साहब, हम देखते हैं कि परमात्मा कहते हैं मैं तो हूँ ही गरीब निवास, तो शिव बाबा आकर के गरीब बच्चों को ही कहीं ना कहीं आगे उठाते हैं, ऊंचा उठा के देवी देवता बनाते हैं। लेकिन उनकी सेवा करने के लिए बाबा कई विशेष जो इस संसार की जानी मानी हस्तियां हैं उनको भी निमित्त बनाते हैं, उनके द्वारा भी करवाते हैं सेवा। तो जो पूरे विश्व में सबसे उच्च ऊंच माने जाते हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं किसी देश के, आपने उनकी भी बहुत समय तक सेवा की है, अभी भी आप कर रहे हैं। तो ऐसी ही एक घटना याद आती है जब प्रथम बार इस देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो मधुबन भूमि पर आए थे और ख़ास ब्रह्मा कुमारीज के प्रोग्राम के लिए आए थे। तो ऐसे ही ज्ञानी ज़ैल सिंह जी के बारे में हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनका मधुबन आना और ये सब संभव कैसे हुआ।
ये परमात्मा का यज्ञ है, परमात्मा का कार्य है और परमात्मा जानी जाननहार है। परमात्मा को पता है कि उसको कैसे आगे बढ़ाना है और उसमें बाबा ने कहा हुआ है, एक तो मेरे अपने ब्राह्मण बच्चे जो कि इसके फाउंडेशन है, ये यज्ञ ब्राह्मण बच्चों का ही है, ब्राह्मण बच्चों के लिए ही है और जो भी श्रेष्ठ कार्य भगवान ने विश्व परिवर्तन का रखा हुआ है वो ब्राह्मण बच्चों के द्वारा ही होना है।
जी।
और जैसा आपने ठीक कहा कि ब्राह्मण बच्चे बिल्कुल साधारण तबके से आते हैं, बाबा को इसीलिए गरीब नवाज कहा जाता है। कोई भी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति आज के समय का मुश्किल ही ब्राह्मण बनता होगा, और क्योंकि वो इस वक्त के सुखों को भोग रहा है, उसका कोई पोजीशन है, कोई पद है, कोई धन है, संपत्ति है, मतलब आज की दुनिया में वो अपने आप को सुखी गिनता है। और जो बच्चे हैं वो फिर भी बाबा कहते हैं उनका भी आपको सहयोग लेना है और ख़ास तौर पे इस ज्ञान को मान्यता मिले, इस ज्ञान को दूसरे लोग बाहर वाले भी स्वीकार करें, उसके लिए बाबा ने कहा था जिसको माइक्स कहते हैं, जो VIP होते हैं उनकी आवाज़ सारे सुनते हैं। अगर कोई VIP किसी जगह जाता है तो इस लोग मानते हैं सारे कि इस उनकी मान्यताओं को एंडोर्स करता है, अगर ख़ास तौर पे जाता है
जी।
तो इस हिसाब से बाबा ने गरीब बच्चों के द्वारा, साधारण बच्चों के द्वारा इस यज्ञ को आगे बढ़ाया है, जिन्होंने इस ज्ञान को माना और इस मार्ग पर चले। एक दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं संबंध संपर्क वाले, तो ऐसे VIPs जो हैं वो संस्था के नियमों पर तो पूरा नहीं चल पाते, लेकिन वो संबंध संपर्क में आकर के एक पुण्य काम जाने अनजाने में कर जाते हैं जो इस संस्था में सहयोगी बनते हैं। तो इसी सिलसिले में राजनीतिक नेता जो होते हैं उनकी आवाज़ सारे देश वाले सुनते हैं। अगर आज का सारे वर्ल्ड का रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आवाज़ राजनीतिक नेताओं की सुनी जाती है ना, धर्म नेताओं की किसी लिमिटेड तबके में सुनी जाती है, साइंटिस्ट वगैरह बड़े बड़े होते हैं, बिजनेसमैन, लेकिन उनकी आवाज़ पब्लिक नहीं सुनती। तो इसलिए बाबा ने ये नाटक के अंदर समझो पार्टी बनाया हुआ था, कि हमारा जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है वो अनेक प्रकार के बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं उसमें आए और वो इस ज्ञान को अप्रिशिएट करें ताकि जो है इसका स्टेटस संस्था का बढ़े। और इस सिलसिले में अगर हम रिट्रोस्पेक्ट में देखें तो आज तक भारत के कई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर और इसके अलावा अनेक और लोग, सुप्रीम कोर्ट के जज इत्यादि इत्यादि बड़े बड़े नेता, साइंटिस्ट, वो सब आए हैं। लेकिन इस सारे सिलसिले की शुरुआत जो आइस ब्रेकिंग कहते हैं
जी,
वो हुई थी ज्ञानी दयाल सिंह जी के विजिट पर, है जी,
जी। हाँ, तो भाई साहब ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है।
हाँ,
इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के लिए।
हाँ,
भी तो हम थोड़ा शुरुआत से जानना चाहेंगे कि आप उनसे मिले कब। हाँ,
तो ऐसा है कि ज्ञानी दयाल सिंह जी राष्ट्रपति थे और मुझे याद तो नहीं है लेकिन 80s में वो राष्ट्रपति रहे
जी,
शायद 82 से 85 तक, और उसी पीरियड में वो माउंट आबू आए थे। लेकिन भगवान कहता है कि मैंने हर एक का कोई पहले से ही संपर्क संबंध जोड़ा होता है जिस कारण वो कार्य संभव हो सकता है, वैसे वो शायद असंभव हो। तो मैं जो था, मैंने पहले भी बताया था कि मुझे बाबा ने कहा था तुम कोई गवर्नमेंट सर्विस कर लो, और मैं पंजाब में नंगल के स्थान पर जो भाखड़ा नंगल डैम है वहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस मैंने की थी। और उसी दौरान में हमने, क्योंकि मुझे सेवा का शौक था, तो चंडीगढ़ जो है वो नंगल से कोई 87 किलोमीटर होता था और मैं वहाँ पर स्कूटर से रेगुलरली जाया करता था क्योंकि कैपिटल सिटी था
जी,
पंजाब का, हरियाणा का। तो वहाँ लोकल गवर्नमेंट भी थी, वहाँ तीन गवर्नमेंट चलती थी, एक चंडीगढ़ कैपिटल टेरिटरी, एक हरियाणा का भी हेडक्वार्टर चीफ कैपिटल और पंजाब का भी कैपिटल। बेसिकली वो पंजाब में था इसलिए पंजाब की वहाँ प्रसिद्धि थी। तो मैं जाया करता था और क्योंकि हमको म्यूज़ियम बनाने का शौक़ था, बाबा ने भी कहा हुआ था कैपिटल सिटीज़ में अच्छे अच्छे सेंटर बनाओ, तो हमने लगभग हफ्ते में हर वीकेंड में जाकर, कई वीकेंड तक जाकर पहले एक वहाँ बहुत अच्छा बंगला ढूंढा जो कि म्यूज़ियम बनाने के लायक हो, एक बहुत अच्छे एरिया में, 21 सेक्टर में
जी।
अच्छा, 21 सेक्टर बहुत मशहूर था और बड़ी मार्केट के पास था। तो उसके बाद हमने वहाँ म्यूज़ियम बनाया। अच्छा, म्यूज़ियम भी बहुत अच्छा बनाया, दिल्ली से आर्टिस्ट मंगवाए और जो दिल्ली में हमारे आर्टिस्ट पेंटर वगैरह कई महीने वो वहाँ रहे, बहुत दिल से और नए ढंग से म्यूज़ियम बनाया। अच्छा, अब उस म्यूज़ियम के जो आउटसाइड मॉडल होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है
जी।
क्योंकि ये कोठियाँ थीं तो उसके बरांडा में हमने आधा बरांडा घेर कर शीशे लगा कर एक मॉडल बनाया जिसमें एक नाव दिखाई थी, बोट
जी।
तो बोट में सेठ भी बैठा था और लोग भी बैठ, तो थोड़ी टिल्टेड थी जैसे डूब रही हो
जी।
और उसके ऊपर हमने लिखा हुआ था कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला, उस प्रकार के मुझे पूरा यादनी सीनरी उसमें थी
जी।
तो हुआ क्या कि जब वो म्यूज़ियम बन गया और बहुत लोग उसमें आने लगे तो उसकी फोर्थ बिल्डिंग में कांग्रेस का ऑफिस था और ज्ञानी दयाल सिंह कांग्रेस के बहुत ही पक्के और निश्चित वर्कर थे और कुछ पद होल्डर भी थे कांग्रेस पार्टी में, और उस वक्त कांग्रेस पार्टी का ही राज था सारे इंडिया में, पंजाब में भी था। तो वो टहलते हुए एक दिन शाम को उन्होंने देखा ये मैंने हैं म्यूज़ियम बना, अंदर आ गए तो उन्होंने म्यूज़ियम देखा और म्यूज़ियम देख करके वो जो मॉडल था उसको ख़ास तौर पे देख करके खड़े होकर बोले अच्छा कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है
जी।
इस प्रकार से उनकी फर्स्ट मीटिंग वहाँ हुई थी। उसके बाद ब्रह्मा कुमारी चंडीगढ़ में जो हमारे बहनें भाई थे वो मिलते रहे और कोई ख़ास मौका होता था क्योंकि चंडीगढ़ से स्कूटर पर आने में 2 घंटे ही लगते थे, हम उस वक़्त यंग थे और बहुत तेज़ी से स्कूटर चलाते थे, कोई ख़ास मौका हो तो हम वहाँ पहुँच जाते थे। उसके बाद उनसे हमारे उस दौरान में बहुत सारी मुलाकातें भी हुई, वो बहुत सिंपल लिविंग रखते थे, बहुत नेक व्यक्ति थे, मिलनसार थे। तो हमारे साथ वो कई बातें शेयर करते थे, संस्था के बारे में पूछते थे, इस तरह से वो चलता था। तो हमारा उनका उनका जो परिचय था तब से था।
तो भाई साहब, जैसे आपने बताया आप रहते तो नंगल में थे, हाँ, लेकिन चंडीगढ़ आना जाना हाँ, करते थे।
हमारा मेन अटेंशन चंडीगढ़ पर
चंडीगढ़
था।
पे था, तो वहाँ पे इतना स्वाभाविक ही वो म्यूजियम में खुद ही चल के आ गए। तो वहाँ पे जो बहनें रहती होंगी उन्होंने फिर कुछ फॉलो अप किया होगा।
वो मतलब जब भी गुजरते थे मिलते थे, बहनें भी चली जाती थी, मान लो गुरुवार है प्रसाद भोग देने, सिख लोगों को भोग का बहुत वैल्यू होता है,
जी,
तो बड़ी इज्जत से वो मिलते थे।
तो जब उन्होंने आकर के म्यूजियम देखा और खुद उन्होंने अपने मुख से पूरा पढ़ा, तो उस समय पे कैसा रहा था पूरा, उन्होंने म्यूजियम समझा उसके
हाँ,
बाद
अच्छी तरह
पूरा?
समझा, सारा म्यूजियम देखा, एक एक चीज़ को। हमारा नॉलेज तो नहीं है ना,
जी
इसलिए स्वर्ग का सीन भी है और सीन भी हैं। तो बहनों ने कहा आपका फोटो लेना है, तो
जी
कहते हैं मेरे स्वर्ग के आगे खड़ा करके लेना है, तो
जी
वो भी हुआ था। ये सारी बातें हुई
तो
थी।
कोई विशेष बात जो उनको उस समय बताई गई हो जो आपको लगता है कि बाबा ने बीज डाला वहाँ पर म्यूजियम में
ऐसा तो
बहनों ने?
मुझे याद नहीं है कि म्यूजियम मैंने नहीं दिखाया था। एक चीज़ थी कि उनमें ये पाया गया कि वो बहुत ही सिंपल स्वभाव के थे, कंप्लीट खद्दर पहनते थे,
जी
यानी उनका अचकन पहनते थे, वो भी खद्दर का होता था हर चीज़। जब तक वो राष्ट्रपति बने वहाँ तो उनको और प्रकार का प्रोटोकॉल रखना पड़ता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में वो ऐसा करते थे। पहले वो कांग्रेस के नेता थे, फिर वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए।
जी
तो जब चीफ मिनिस्टर बने तो हम उनको मुबारक देने गए। तो मुबारक देने गए तो मोहिनी बहन हमारे पास रहती थी, वो उत्तर प्रदेश की थी और जैसे बहुत तोतली मीठी पंजाबी बोलती थी, क्योंकि
जी
पंजाब में रहती थी, 17 साल वो रही।
जी
तो हम गए तो उनको मुबारक दिया आदि, अपने स्वभाव के अनुसार वो बहुत सिंपल थे, फूल ले गए। तो फिर मोहिनी बहन ने, मुझे याद आता है, अपनी तोतली पंजाबी भाषा ने कहा, सरदार जी तुहाडे लिए तो स्वर सतयुग आ गया ना, ऐसे उसने बोला था। तो वो
जी
मुस्कराए,
जी
ये बात हुई थी। हाँ जी,
तो भाई साहब, पहले तो वो कांग्रेस के नेता थे, फिर बाद में सीएम बने, उसके बाद में वो कैबिनेट में भी आए, दिल्ली में भी आए, राष्ट्रपति बनने से पहले तो भी आपका संपर्क
हाँ।
रहा
तो
उनसे?
हम बाद में वो सीएम के बनने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में वो होम मिनिस्टर, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन होता है, तो
जी
गवर्नमेंट ने उनकी सेवाओं को रिकॉग्नाइज किया पंजाब में जो उन्होंने की, और चीफ मिनिस्टर काफ़ी समय तक रहे। तो उस उन्होंने उनको एलिवेट करके ऑल इंडिया इंडिया का होम मिनिस्टर बना दिया। तो होम मिनिस्टर वो काफ़ी समय तक रहे, जब तक कि वो प्रेसिडेंट नहीं बन गए। तो हम उनके घर होम मिनिस्टर के तौर पे, दिल्ली में तो हम रहते ही थे,
जी
अब आसान था हमारे लिए आना, नौकरी हमने छोड़ दी थी, तो हम उनके पास ओकेजनली जाया करते थे। कोई बड़ा त्यौहार हो तो उनको टोली देने चले जाते थे प्रसाद देने, गुरुवार को भोग देने चले जाते थे। तो इसी पर भोग का उनको बहुत महत्व होता है सिख लोगों के लिए
जी
खासतौर
जी
पर, और वो हमें सीधा अपने बेडरूम में ही बुला लेते थे। इतने वो हमारे से इनफॉर्मल थे, बेडरूम में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे कई बातें सुनाया करते थे। इस तरह से हमारा उनसे लगातार, आप समझ लीजिए कि संपर्क रहा, 72 से लेकर के, उससे भी पहले से लेकर के, जब तक होम मिनिस्टर बने और रहे, हम उनसे मिलते रहते थे। यानी ये समझिए कि शिव बाबा ने पहले से बैकग्राउंड तैयार कर रखी थी
जी
कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति माउंट आबू में आएगा और यज्ञ के स्टेटस को बढ़ाएगा,
जी
क्योंकि पहला राष्ट्रपति वो जो माउंट आबू आया था वो दयाल सिंह जी थे,
जी
और उसका बहुत ही महत्व था।
तो भाई साहब, फिर उन्होंने, क्योंकि इतने समय से संपर्क चल रहा था, तो जब आपने उनको प्रपोज किया कि आप माउंट आबू आइए, तो क्या कारण रहा और उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया?
हाँ, ऐसा है कि हमारा पक्का विश्वास है कि योग बल से व्यक्ति मोल्ड होता है।
जी
अच्छा, तो हम दादी जानकी जी हमारे मैं मानता था कि सबसे बड़ी योगा एक्सपर्ट हैं, यानी योग पर उनकी मास्टरी है और योग का स्वरूप है राजयोगिनी रियल जो बाबा चाहता है नंबर वन वो है। और भी दो तीन बहनें हमारी बड़ी नंबर वन है। तो मेरा विश्वास होता था कि जब भी मैं कोई बहुत बड़ा काम हो, क्योंकि हमारे लिए साधारण व्यक्तियों के लिए और संस्था उस वक्त को इतनी पॉपुलर नहीं थी, इतने उसके सेंटर भी नहीं थे, बस वो कोई व्यक्तिगत जानता हो तो जानता हो, तो ज्ञानी जी व्यक्तिगत हमारी संस्था को जानते थे, अच्छा काम करते हैं आदि। तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया। अच्छा, वैसे भी हम राष्ट्रपति के तौर पे उनको राखी बांधने जाते रहे हैं कैजुअली, लेकिन ये बात जब आई तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया और साथ में दादी गुलजार जी को जाना था, एक न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन थी उस वक्त वहाँ रहती थी उनको जाना था। तो मैंने दादी अपॉइंटमेंट का टाइम नोट कर लिया और दादी जानकी लंदन में थे
जी,
मैंने उनको फ़ोन किया कि दादी जी बहुत बड़ा कार्य है और राष्ट्रपति जी को हमने माउंट आबू ले जाना है, क्योंकि उस समय कन्वेयंस के साधन ही नहीं थे पूरे, तो इसलिए आप इतने बजे हम हमारी अपॉइंटमेंट उनकी तो फिक्स टाइम होता है, आप बहुत योग लगाइए, योग बल दीजिए। तो दादी ने कहा ठीक है। तो जब हम उनसे मिलने गए राष्ट्रपति भवन में, तो मैंने उस वक्त फिर फ़ोन किया, अब दादी जी हम वहाँ पहुँच रहे हैं
जी।
अच्छा, उसके बाद हम अंदर गए तो ज्ञानी जी ने हमें एक रूम मिलने का रूम होता है, वहाँ बुला लिया और बीच में बैठ गए। और उसके बाद गुलजार दादी, मोहिनी बहन और मैं, हम बैठ गए। वो सेंटर में सामने बैठे थे, हम साइडों में बैठे थे। तो मैंने कहा, बताया हमारी दादी आई हैं ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा हम दो तीन मिनट योग लगाते हैं, शांति में बैठते। कहता अच्छा
जी।
तो उसने अपने पीए को कह दिया कि देखो कोई अंदर नहीं आए, डिस्टर्ब नहीं करे, और बैठ गया। थोड़ी देर में उसने अपनी टांगे शफल की, मैंने नोट किया अब उसको कोई पावर जो है शक्ति दे रही। बैठ गए और हम सब योग में बैठ गए। हमारा तो उस वक्त विशेष योग लगाना था, तो हमने देखा 4-5 मिनट हो गए कोई हिलता ही नहीं
जी।
अब हमने तो उनसे बोलना था, ज्ञानी जी भी इतने चढ़ गए ध्यान में और हम लोग भी, कि 5 मिनट हो गए कोई बोले ही ना। तो फिर मैंने बहन जी को इशारा किया कि बहन जी कुछ बात शुरू करो, तो फिर वो मतलब इतना उसका प्रभाव उन पर हो चुका था। फिर दादी ने कहा कि आपको माउंट आबू से प्रकाशमणि दादी जी ने निमंत्रण दिया है, आप हमारी संस्था को तो जानते हैं लेकिन वहाँ हेडक्वार्टर है, आपका वहाँ कदम पड़ेंगे, आपका ब्लेसिंग मिलेगी तो संस्था के कार्य को और प्रोत्साहन मिलेगा पब्लिक के द्वारा, ऐसे ऐसे कहा।
ये गुलजार दादी जी ने कहा जी।
और फिर मोहिनी दादी ने कुछ बोला
जी,
तो मान गए, कहते ठीक है मैं आऊँगा। तो बहुत खुशी हो गई हमें, तो हमारे तो कहने क्या था, हमने बाहर आके दादी जानकी जी को भी इन्फॉर्म किया कि दादी जी आपकी योग बल से काम हो गया, सारे माउंट आबू में भेजा, बहुत लहर फैल गई। तो इस तरह से उन्होंने माना। अच्छा, अब क्या हुआ कि किसी को इनवाइट करना ऑफिशियली, तो उसके लिए सिस्टम होता है। एक प्रेसिडेंट को आपने इनवाइट करना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, देयर शुड बी सम कॉज, क्योंकि उनके प्रोटोकॉल में है राष्ट्रपति का वहाँ जाना क्यों ज़रूरी है, यानी कोई दूसरा क्यों नहीं जा सकता, कोई जूनियर क्यों नहीं जा सकता। अच्छा, तो हमारा हमने तो उनका विजिट ही कराना था। तो उन्हीं दिनों में हमने एक सुदर्शन भवन एडजॉइनिंग पांडव भवन ऑफ माउंट आबू हेडक्वार्टर लिया था, वो बनी बनाई बिल्डिंग थी, उसको हमने अच्छी तरह रेनोवेट करा के बिल्कुल नए जैसा बना लिया था। तो हमने उनको जो लेटर लिखा ऑफिशियल, उसमें लिख दिया टू विजिट अवर हेडक्वार्टर इन माउंट आबू एंड इनॉग्रेट द न्यूली एक्वायर्ड सुदर्शन भवन, ये लिख दिया
जी।
इन भवन का उद्घाटन एक कारण बन गया। तो हमने उनको चिट्ठी भेज दी। अच्छा, अब क्या हुआ कि राष्ट्रपति का जो स्टाफ होता है वो इंक्वायरी करता है, लोकल वहाँ से अपने उनका कलेक्टर होता ना जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट उसके थ्रू इंक्वायरी करता। उन्होंने इंक्वायरी कराई। अब इंक्वायरी में उनको कलेक्टर ने उनको रिपोर्ट दे दी कि जो सुदर्शन भवन है इट इज़ नॉट ए न्यू बिल्डिंग, इट इज़ ए ओल्ड, इट इज़ एन सेकेंड, इट इज़ एन एक्वायर्ड बिल्डिंग विच हैज़ बीन रेनोवेटेड, सो एज पर प्रोटोकॉल प्रेसिडेंट कैन नॉट इनॉग्रेट। अब वहाँ उसके ऑफिस में पहुँच गया, फिर हम वहाँ गए, हैं जी, तो फिर हमने उनको कहा कि है तो सही ऐसा, तो आप सुदर्शन भवन के उद्घाटन को डिलीट कर दीजिए, हम वो नहीं चाहेंगे, आप वैसे आइए। तो क्योंकि वो इंक्लाइंड हो गए थे तो उन्होंने मान लिया और कहा मैं जाऊँगा। इस प्रकार से उनका विजिट हो गया। अब जब वो माउंट आबू में आए तो दो हेलीकॉप्टर आए, फर्स्ट टाइम माउंट आबू में दो हेलीकॉप्टर आए और वहाँ एक पोलो ग्राउंड है
जी,
तो वहाँ वो उतरे और हमारे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था, वहाँ उतरे और माउंट आबू की पब्लिक वहाँ भीड़ लगाई हुई थी देखने के लिए राष्ट्रपति को
जी।
तो ज्ञानी जी हमेशा इमेकुलेटली ड्रेस्ड रहते थे, उनका ये खास खूबी थी कि रुमाल लगाएंगे, गुलाब का फूल ज़रूर लगाएंगे। तो वो उतरे और उन्होंने इतनी जनता को देख कर ना एक मिनट तो वे भी करते रहे
जी।
तो बहुत अच्छा सीन लग रहा था। उसके बाद वो हमारे हेडक्वार्टर में आए, उन्होंने कैंपस को देखा, भोजन भी किया और बहुत खुश हुए और उन्होंने एक बहुत अच्छा स्पीच किया विच वॉज हिस्टोरिकल फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन कि एक देश का राष्ट्रपति वो आकर के वहाँ रहता है और वहाँ आकर के काम की तारीफ करता है। तो इस प्रकार से ये घटना हुई थी।
तो भाई साहब बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है ये यज्ञ के लिए और माउंट आबू के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रही होगी क्योंकि पहली बार शायद माउंट आबू कोई प्रेसिडेंट आया है और उन्होंने जो वहाँ आकर के बोला होगा वो जरूर पूरे उसने द्वार खोल दी औरों के भी आने के।
और ब्रह्मा कुमारी में सब में एक नया उमंग और उत्साह आ गया, जैसे खुशी हो गई जैसे कि एक राष्ट्रपति हमारे विद्यालय में आया है।
तो भाई साहब फिर निर्विघ्न रहा उनका पूरा इनॉग्रेशन भी किया सुदर्शन भवन का?
नहीं, नहीं किया, वो हमने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि हमें वो तो कॉज था।
तो भाई साहब इसके बाद भी जैसे वो माउंट आबू आके बाबा के घर में वो वाइब्रेशंस, फिर बाद में भी बाबा ने उनके द्वारा कोई सेवा कराई, संपर्क रहा?
उसके बाद क्योंकि वो संस्था को और ज़्यादा हेडक्वार्टर को जानने लग गए तो बीच में कोई बड़ी दादी आती थी तो हम उनको राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलाते थे और वो काफ़ी इनफॉर्मल हो गए थे। तो मुझे याद है उन दिनों एक ऑल इंडिया साइकिल रैली निकली थी ब्रह्मा कुमार्स की,
यूथ विंग की,
यूथ विंग की, जो भिन्न भिन्न कोनों से देश के साइकिल रैली आई थी और कन्वर्ज हुए थे दिल्ली में। तो वहाँ उनको हमने ऑनर करना था तो ये सोचा गया कि क्यों ना राष्ट्रपति जी से भवन में उनका रिसेप्शन रखवा दें। तो उनके सेक्रेटरी जो थे यू आर कपूर होते थे तो उनके साथ साथ रहते थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने राष्ट्रपति जी को कहा, ही एग्रीड और बहुत अच्छा रिसेप्शन उनका यूथ का हुआ और वो उससे और भी इनक्रेजमेंट मिल गई। यूथ ने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाए, उन्होंने कुछ इंटरेक्शन किया यूथ के साथ, इस तरह से हुआ था। और उसके बाद भी जो है कई सारे मतलब ऐसे वो बहुत एक दृढ़ विश्वास के व्यक्ति थे। तो एक बार हमने श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा फंक्शन उन दिनों के हिसाब से रखा तो हम चाहते थे राष्ट्र जैल सिंह जी आके उसके प्रेजाइड करें, उनको जेड सिक्योरिटी थी और उनके सारे सेक्रेटरी ने मना कर दिया कि आपका जाना ठीक नहीं है, लेकिन उसने कहा मैं जाऊंगा
एज प्रेसिडेंट
उसने कहा मैं जाऊंगा और वो आए। तो ये उनकी खूबी थी। और इसी प्रकार से मुझे याद है राखी बांधने हम बहनें उनको लगातार जाती थी। तो एक बार क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे, नहीं उस समय वो एक्स प्रेसिडेंट हो गए थे
श्री फोर्ट के समय पे।
और श्री फोर्ट के समय भी एक्स प्रेसिडेंट थे और ये साइकिल रैली में वो प्रेसिडेंट थे। तो फिर राखी बांधने जाना था तो बहनों को क्या होता है कि इम्पोर्टेंट लोगों को बांधे तो प्रेसिडेंट जो नया था प्राइम मिनिस्टर आदि अपॉइंटमेंट एक ही टाइम में मिलते चले गए। तो जैल सिंह जी के बाद वो थोड़ा लेट गए, उनको अलग बंगला मिल गया था एज एक्स प्रेसिडेंट। तो जैल सिंह जी बहुत सहज स्वभाव में कहा, देखो भैन जी मैं सवेरे तो ड्रेस पहन के बैठा, तुसी हुण आयो, मतलब ये उनका था कि भाई मैं तो सुबह से आपने कहा था तो मैं बैठा हुआ हूँ, फिर भी उन्होंने अच्छी तरह से रखे। मतलब ये कि टिल हिज लास्ट वो जो है ब्रह्मा कुमारी इसको लगातार मदद करते रहे और हम भी उनके पास लगातार आते जाते रहे।
तो भाई साहब बहुत अच्छे से हमने फोटोग्राफ्स भी देखी हैं, साइकिल रैली के समय पे बीच में प्रेसिडेंट खड़े हैं और यूथ खड़े हैं, बहुत इम्प्रेसिव फोटोग्राफ्स हैं। उनकी पर्सनालिटी भी दुनिया के हिसाब से बहुत अच्छी रही थी। तो आपने उनमें क्या विशेषता देखी जो बाबा ने उनके द्वारा ये सेवा कराई?
देखिए पहली बात तो ये है कि बाबा हर स्टेप पे मदद करता है
जी,
किसी भी स्टेप पे, क्योंकि राष्ट्रपति और उन दिनों में 82 में 83 में उसका माउंट आबू आना बहुत ही कठिन था, क्योंकि कई लोग राष्ट्रपति भवन में भी ऑब्जेक्शन कर देते हैं, मीडिया वाले पीछे पड़ जाते हैं आदि आदि। क्या है, पहली बात यह है कि एक साधारण व्यक्ति गांव का रहने वाला वो राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर बना, चीफ मिनिस्टर बना, राष्ट्र, ऐसी कोई खूबी होगी ना उनके अंदर, ज़रूर ऐसे तो नहीं बन जाता। तो एक बार उन्होंने हमें सुनाया था अपनी निष्ठा के, गांव में कोई कांग्रेस का वर्कर था और वो उसको शायद गोली लगी थी या जख्मी हो गया था और उसको दिन में ले जाना खतरनाक था क्योंकि उसको पुलिस पकड़ लेती या मार देते पकड़ लेती। तो कहते हैं कि उसको इमीडिएटली शहर में डॉक्टर के पास ले जाना था। तो कहते हैं बैलगाड़ी में जाते थे, तो कहते थे एक ही बैल था तो मैं जुट गया, यानी यहाँ तक आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति में इतनी निष्ठा थी कि खुद उस गाड़ी में ले आके ले गया। तो ऐसे ही नहीं कोई व्यक्ति बन जाता, उसके पीछे उसका त्याग तपस्या होता है। ये बात मैं
लौकिक में भी ज़रूरत है और बाबा तो हमें बताते हैं कि हमको तो पूरा नई दुनिया लानी है, तो ज़रूर बाबा हमें भी वो शक्ति भर रहे हैं।
और हम लोग भी ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए तो हम उसके साथ एंड तक कांटेक्ट रखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि चलो राष्ट्रपति जी आ गए माउंट आबू, अब हमारा काम इनसे हो गया। कारण क्या है कि बाबा ने हमें ये गहरा ज्ञान दिया हुआ है कल्प कल्प का, कि अगले कल्प ये फिर आएंगे, तो इसलिए पिछले कल्प में अब हम उनकी तोड़ तक सेवा करेंगे, उनसे मेल जोल रखेंगे। वो ब्रह्मा कुमार तो नहीं बन सकते ज्ञान के, संपर्क वाले तो हैं ना, एक्स प्रेसिडेंट की भी बहुत वैल्यू है, तो वो हम उनके साथ तोड़ निभाते हैं ताकि अगले कल्प में फिर उनका संस्कार जल्दी से जागृत हो जाए। ये भी हमारा रहता है कि जैसे हमारे रेगुलर भाई बहन हैं, बीकेज हैं, वो संपर्क वाले भी उसी प्रकार से हमारे कम सहयोगी नहीं हैं। इस प्रकार के व्यक्ति नहीं आते तो संस्था का स्टेटस नहीं बढ़ता।
बिल्कुल भाई साहब,
ज्ञान नया था
जी। हाँ जी, तो ड्रामा में हर प्रकार की आत्मा का अपना रोल है, अपना महत्व है। हम बाबा के बच्चे डायरेक्टली बाबा के सहयोगी हैं, कोई इनडायरेक्टली संबंध संपर्क के द्वारा। और भाई साहब इसमें साथ साथ ज्ञानी जैल सिंह जी की जो विशेषता थी, उनको जो सम्मान समाज में मिलता था, बाबा ने उनके द्वारा आपके द्वारा मदद से ये कार्य कराया। और आपकी भी तीक्ष्ण बुद्धि जो बाबा ने बनाई है, तो बाबा उसमें हमेशा नई नई प्रेरणाएँ देते हैं। तो बाप दादा की इस मदद के इस किस्से से कि किस प्रकार से बाप दादा ने उस समय लगने वाले असंभव कार्य को भी, जिसमें विघ्न भी आए, उसको भी संभव कराया।
हाँ जी।
तो इसी के साथ हम आज का ये एपिसोड, इससे हमने ये जाना कि कोई भी कार्य जो परमात्मा ने अपनी मुरलियों में, अपने महावाक्यों में कहा है संगम पर, वो होना ज़रूर है। हम अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण रखें, हम अपनी बुद्धि को ओपन रखें ताकि बाबा की वो मदद हम रिसीव कर सकें। और भाई साहब के द्वारा जो हम ये किससे जान रहे हैं बाप दादा की मदद के, इससे हमें यही महसूस होता है कि बाप दादा अपने बच्चों की मदद करने के लिए, उनका भाग्य बनाने के लिए हमेशा नित्य प्रेरणाएँ हमें देते रहते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायी कुछ और हम आपके द्वारा ये जानते रहेंगे और आप हमारे साथ इसी कार्यक्रम में बने रहें। ओम शांति।